हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग का दर्शन इस अध्याय में जो प्रारंभ किए और सांख्य योग से बुद्धि योग या भक्ति योग अब अर्जुन को पहुंचाए हैं। हमने अपने पिछले सिटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिया था इस दूसरे अध्याय का, नेहा भिक्रमनाशोस्ति प्रत्य वायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जहां अर्जुन की एक शंका का निवारण भगवान ने किया। अर्जुन को जब भगवान ने उसके पिछले श्लोक में कहा था कि बुद्धि से या ज्ञान से अर्जुन अपने कर्म बंधन को काट सकेंगे, तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि यदि मैं इस बुद्धि योग से अपने कर्म बंधन को काटने जाऊं और बीच में मैं सफल न रहूं, तो मेरी वो जो असफलता है क्या वो मुझे कुछ फल देगी या फिर मुझे वो कार्यक्रम शुरू करना होगा कर्म बंधन के काटने का। तो इसलिए उस शंका का निवारण करने हेतु भगवान ने जो हमने पिछली बार श्लोक लिया था 40वां श्लोक, और आज का जो श्लोक है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, विशेष रूप से आज के दिन आप लोग इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि व्यवसायात्मिक बुद्धि है आप लोग सब, इसलिए शायद, या शायद प्रार्थना तो करने नहीं आए मदन गोपाल जी से, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं अकाम सर्व काम होवा ये न के न प्रकारेण, व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनांताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनांताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनांताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। भगवान यहां अर्जुन को कुरुनंदन ये उल्लेख कर रहे हैं, हे कुरुनंदन एकेह एक समान रहो और अपनी बुद्धि को व्यवसायात्मिका बनाओ। और भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है वो इस बुद्धि योग जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा उसे सही बुनियाद देता है। और इसके विपरीत इस श्लोक में भगवान कहते हैं बहुशाखा यनांताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो व्यवसायात्मिका और उसका विपरीत है अव्यवसायात्मिका, और एकेह और बहुशाखा। तो ये ऐसे शब्द भगवान इस श्लोक में इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए कि जो दृढ़ व्रत हैं, उस दृढ़ संकल्प के वजह से क्या परिणाम बुद्धि योग में वो प्राप्त करते हैं, और जो दृढ़ संकल्प नहीं, जो बहु शाखा मैनी ब्रांच्ड, शाखा ब्रांचेस, बहु बहुत सारे, मैनी ब्रांच्ड, तो क्या होता है उनका हाल। तो ये श्लोक भगवान ने और बहुत से हमारे आचार्यों ने इस श्लोक के ऊपर बहुत सी टीकाएं लिखी, इसकी हम चर्चा करेंगे कैसे इस्कॉन की बुनियाद इस श्लोक पर है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की बुनियाद इस श्लोक पर कैसे है। तो आज के हमारे चर्चा के विषय, पिछले श्लोक से क्या संबंध आज के श्लोक का, व्यवसायात्मिका बुद्धि की व्याख्या, एकेह बुद्धि की व्याख्या, कुरु नंदन भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा, बहुशाखा बुद्धि क्या है, और अंततः श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या व्याख्या आज के इस श्लोक की। तो पिछला श्लोक जिसके अंदर भक्ति की महिमा भगवान बताए, अक्सर भारत में भक्ति योग को सभी जानते हैं और कुछ हद तक भक्ति का पालन भी करते हैं, परंतु एकेह भक्ति वो बहुत विरले होते हैं जो एकात्म भक्ति करते हैं बिना किसी अन्य शाखाओं के। तो इसलिए भगवान तुरंत पिछले श्लोक में भक्ति योग की महिमा जो सुनाए, भक्ति योग की महिमा सुनाने के तुरंत पश्चात अब भगवान इस श्लोक में सुना रहे हैं कि उस भक्ति की बुनियाद क्या होनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, When Krishna mentions about bhakti in Bhagavad Gita, it is not simply some sentiment. वो केवल भावुकता नहीं है, उसकी बुनियाद श्रद्धा के ऊपर टिकी है। आज का जो श्लोक है श्रद्धा, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, चैतन्य चरितामृत में कहा, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, कि वो श्रद्धा सुदृढ़ होनी चाहिए और शब्दों, भगवान के शब्दों पर आधारित, और ऐसी श्रद्धा से जब कोई कृष्ण भक्ति करता है सर्व कर्म कृत होए, सभी कर्मों से वो मुक्त हो सकता है, कर्म और कर्म के बंधनों से। तो इसलिए केवल हमें भगवद गीता में जो भक्ति योग का गुणगान करते हुए श्लोक हैं, उन्हें जो उनके बुनियादी श्लोक हैं उनसे अलग कर नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत आसान लगती ना भक्ति, है ना, बहुत आसान है, बस एक मन में भावना रखो, कीर्तन करो, दर्शन कर लो, प्रसाद खा लो, हो गई भक्ति, हो गई नहीं। इसलिए भगवान जब ऐसे श्लोक भगवद गीता में सुनाते हैं तो उसका बैकअप क्या है, ये ऐसे श्लोक व्यवसायात्मिका बुद्धि कि गुरु नंदन हे अर्जुन एके ह, अर्थात यहां वहां, क्योंकि भारत में भक्ति या बाहर भी यदि हम देखें तो उसका ट्रांसलेशन वो करते हैं लव। तो एक हमारे सन्यासी बता रहे थे कि वेस्ट में ये जो लव है, इस शब्द का जो डेफिनेशन इतना लिमिटेड है, तो जब बोलते हैं आई लव गॉड, वही शब्द वो गॉड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वो ये भी बोलते हैं आई लव माई डॉग ऑल्सो। तो भगवान के लिए भी वही लव शब्द इस्तेमाल किया गया है और कुत्ते के लिए भी वो लव शब्द इस्तेमाल किया है। अर्थात कि उसका कोई कोई वैल्यू वेल डिफाइंड नहीं है उस शब्द का। तो वैसे ही भारत में भक्ति, देशभक्ति है ना, आज देशभक्ति बहुत हो रही है, उसको भी भक्ति बोलते हैं। मैं देश भगत हूं। एक बार हमारे बंबई में प्रेरणा का ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय एक कोई बॉलीवुड की पिक्चर आई थी, भगत सिंह, बहुत फेमस हुई थी भगत सिंह करके। तो हम यूडी सिटी कॉलेज में बोल रहे थे, तो बोले आप प्रभु जी, हम मतलब बता रहे थे, ऐसे कभी बताते नहीं कौन सी पिक्चर देखने जा रहे, लेकिन अभी बता रहे थे भगत सिंह देखने जा रहे उस दिन। तो हमने कहा हमारे मंदिर में भी बहुत से भगत हैं, वी हैव मेनी भगत इन अवर टेम्पल एंड दे ऑल आर सिंगिंग हरे कृष्णा। तो भारत में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार से कि हाँ, वो भी भक्ति चल रही है, देश की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति और हाँ कृष्ण की भक्ति, नहीं बहुत अंतर है। इसलिए आज का श्लोक समझना बहुत आवश्यक है कि वो जो भक्ति की परिभाषा हम समझना चाहते हैं उसकी बुनियाद क्या सुदृढ़ विश्वास है या केवल एक भावना। इज इट बेस्ड ऑन सॉलिड कन्विक्शन डिटर्मिनेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और इज इट सिंपली सुपरफिशियल सेंटिमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये दोनों श्लोकों का संबंध जानना आवश्यक है। अब इस श्लोक की शुरुआत हुई है व्यवसायात्मिका बुद्धि। तो इस शब्द को यदि हम लें व्यवसायात्मिका, तो इसका विभाजन इस प्रकार से हुआ है, व्यवसाय और आत्मिका। इन दो शब्दों से यह शब्द बना है व्यवसायात्मिका। व्यवसाय का अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं दृढ़ संकल्प, और आत्मा से संबंधित है ये शब्द आत्मिका, इसका अर्थ है मूल आत्मा। तो अब क्या अर्थ हुआ व्यवसायात्मिका बुद्धि का? जैसे कि हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर जो भी कार्य करता है, क्रियाशील जब रहता है, तो किसके आधार पर यह क्रियाशील है? चेतना और आत्मा। आत्मा अंदर है, आत्मा के आधार पर हम लोग ये शरीर को अलग अलग कार्यों में लगा सकते हैं। तो मूल इस शरीर का आत्मा है, जिसे कहेंगे एपिसेंटर, जिसे बोलते ना कोई अर्थक्वेक या वॉल्केनो का एपिसेंटर होता है, जहां से वो बाहर आता है। तो वैसे ही ये जो आत्मा हमारे अंदर है, उसके वजह से ये हम सब क्रियाएं कर पाते हैं। तो वैसे ही अब बुद्धि, इस श्लोक में भगवान ने बुद्धि को लिया कि बुद्धि का एपिसेंटर क्या है, मूल आत्मिका क्या है, दृढ़ संकल्प। बुद्धि के अंदर यदि दृढ़ संकल्प नहीं है, अर्थात व्यवसाय वो नहीं है, तो वो बुद्धि बुद्धि नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, एक बार प्रभुपाद ने डिटर्मिनेशन के ऊपर क्लास दिया, यही जो श्लोक है जो डिटर्मिनेशन के ऊपर, उसके ऊपर क्लास दिया। तो एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा, जैसे प्रभुपाद उस प्रवचन में ये कह रहे थे कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए हमें हरिनाम की आवश्यकता है, भक्तों के संग की आवश्यकता है, और हरिनाम केवल भक्तों के संग में हो सकता है। ऐसे करते करते अंततः प्रभुपाद पहुंचे डिटर्मिनेशन के ऊपर कि वो सब कुछ संभव है, कब, जब हमारे अंदर श्रद्धा। किसके अंदर श्रद्धा, किसके प्रति श्रद्धा? भक्तों के संग के प्रति श्रद्धा, हरिनाम के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू फेथ, डिटर्मिनेशन, फेथ, सेम, श्रद्धा। तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद यदि हमारे अंदर वो श्रद्धा ही नहीं है, यदि हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प की शक्ति नहीं है, तब क्या करें? इफ वी डू नॉट हैव दैट डिटर्मिनेशन, देन व्हाट वी शुड डू? तो प्रभुपाद बहुत गंभीर हुए, उन्होंने कहा, इफ यू डू नॉट हैव डिटर्मिनेशन देन यू आर एन एनिमल। क्यों? क्योंकि जानवर के अंदर बुद्धि नहीं, उस प्रकार की विकसित बुद्धि नहीं है। तो जब हम अपने आप को बुद्धिमान या बुद्धि योग, पिछले श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग के विषय में बताया, तो यदि हम अपने आप को बुद्धिमान मनुष्य मानते हैं, तो उस बुद्धि का मूल क्या है वो समझना आवश्यक है, और वो है दृढ़ संकल्प। एक सुंदर उदाहरण दिया गया है वृक्ष का। जैसे वृक्ष को हम देखते हैं, यहां पर आम का वृक्ष है, इतना सुंदर, कदम के वृक्ष हैं। तो अब देखिए, ये जितने सारे वृक्ष हम देखते हैं, यहां पर इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? वृक्ष भी दिख रहा है और उसका जो मूल जड़ है वो भी दिख रहे हैं। तो उदाहरण दिया गया है कि वृक्ष जितना ऊंचा उठता है, उगता है, जितना ऊंचा वो उगता है, उतनी ही उसकी जड़ें नीचे भी जाती है, है ना? दोनों ऑपोजिट। ऐसा कभी आप देखोगे नहीं कि वृक्ष इतना बड़ा है और उसकी जड़ें इतनी सी, चिंदी सी कोई जड़ें हैं उसकी। दोनों का प्रोपोर्शन बराबर होता है तब जाकर वो वृक्ष टिक पाता है। तो उसी प्रकार से यदि हमें बुद्धि योग में टिकना है, कृष्ण भक्ति में यदि हमें टिकना है, अर्थात ये उदाहरण दिया गया है कि हमारी भक्ति लता को यदि हमें भगवान श्री कृष्ण के लोक तक पहुंचाना है, तो ये देखना आवश्यक है कि हमारी जड़ें कितना नीचे पकड़ रही हैं, किसको? धरती को। पकड़ कितनी मजबूत है हमारी, और वो हमारी मजबूत पकड़ की तुलना आज के श्लोक में जो व्यवसायात्मिका बुद्धि, दृढ़ संकल्प, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और जो कुछ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कराने के लिए उसमें हमारी श्रद्धा। तो ये वृक्ष का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अक्सर जब कोई बहुत बड़ा वृक्ष होता है जिसे कोई गिरा नहीं पा रहा, तो वो धीरे धीरे करते क्या है कि जड़ों में एसिड डालना शुरू करते हैं, और जड़ों में एसिड डालने की वजह से फिर वो धीरे धीरे उसका जो पकड़ है वो छोड़ने लगता है। हम बहुत वर्ष पहले रोहा गए थे, वहां पर एक हमारे इस्कॉन का अच्छा फार्म है, श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल, उन्होंने बहुत अच्छा फार्म बनाया रोहा में। तो वो हमें बता रहे थे कि जो आते हैं ना पौधे प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक में आते हैं और वो प्लास्टिक के साथ ही वो लोग बो देते हैं उगाने के लिए पौधों को। तो वो बता रहे थे कि वो बहुत गलत है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक के वजह से जो उसकी जड़ है वो केवल उतना ही सर्कुलेट करते हैं अंदर, और वो धरती को अंदर सॉइल को पकड़ नहीं पाता वो जड़। इसलिए उन्होंने दिखाया, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं नीचे एक्सरे विजन जड़ का भी, उन्होंने दिखाया कि वो प्लास्टिक में होने के वजह से वो जो उसका जड़ है उसके जो रूट्स हैं वो नीचे ठीक से पकड़ नहीं लेते, तो थोड़ी भी हवा चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। कभी कभी आपने देखा हवा चली, कोई बहुत बड़ा तूफान भी नहीं था और रोड ब्लॉक, गिर गया वृक्ष। तो उन्होंने कहा उसका कारण क्या था कि वो जड़ को उन्होंने कोई मौका नहीं दिया ठीक से पकड़ लेने का। तो वैसे ही हमारी भक्ति बहुत बड़ा वृक्ष दिखती होगी बाहर से, दिखने में बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत से फल लगे फूल लगे, लेकिन वो जड़ केवल भगवान श्री कृष्ण देख पाते हैं। और फिर थोड़ी सी हवा लगती है ना भक्ति की, भक्ति में माया देवी की हवा, थोड़ी सी हवा चलती है फिर धीरे धीरे समझ में आता है यहां से उखड़ते जाता है वो वृक्ष, उखड़ते उखड़ते एक बार फिर पूरा नीचे भी गिर सकता है। इसलिए ये बुनियादी श्लोक जो आज भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि। इसलिए कई बार आज के दिनों में टेस्ट होता है कि कितना हम कृष्ण भक्त हैं या देशभक्त हैं। कि हाँ, वैसे तो वेडनेसडे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच चल रहा है उस दिन आना, तो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से जो पिछले युगों में सतयुग में बड़े बड़े तपस्वी हुआ करते थे, जो पता नहीं क्या क्या त्यागते नहीं थे, वो उसका जो इंटेंसिटी वही है आज। तो आप लोग वो कैलिबर के हैं आज आए हैं। कोई सेलफोन में तो उतना ही चल रहा ना कुछ, स्कोर क्या है ये वो। तो ये सुंदर उदाहरण दिया है वृक्ष का कि प्रोपोर्शनेट ऊपर और नीचे दोनों होना चाहिए। और उसी तरह व्यवसायात्मिका बुद्धि की तुलना हमारी भक्ति लता से की गई। अब देखिए एक वृक्ष का उदाहरण और भक्ति की तुलना लता से की गई, क्रीपर। अब भक्ति की तुलना लता से क्यों की है, क्रीपर से क्यों की है? क्योंकि वृक्ष जो है उसमें बहुत सी शाखाएं आ जाती हैं, बहुशाखा। उगते हुए वो वृक्ष कहां कहां पहुंच जाता है, लेकिन लता ने यदि पकड़ लिया एक वृक्ष को तो उस वृक्ष के ऊपर ही वो लता छोड़ती नहीं उसको। इसलिए श्रीमती राधा रानी की तुलना लता से की गई है और भगवान श्री कृष्ण की तुलना तमाल वृक्ष से की गई है। कि श्रीमती राधा रानी वो ऐसी लता हैं जो तमाल कृष्ण की पकड़ कभी छोड़ती नहीं, और उन्हीं के सहारे, लता को हर समय सहारा चाहिए वृक्ष का। तो इसलिए हमारी भक्ति की तुलना उस लता से की गई है कि जो एके है, और लता को कोई रोक नहीं सकता, वो एक ही है, उसको जैसे जहां जहां जगह मिले ना मिले, जैसे कि नदी का प्रवाह होता है, पत्थर कितने भी डाल दो यहां वहां से ऊपर नीचे से आजू बाजू से निकलकर वो जो जल का प्रवाह निकलता है, वैसे ही लता। इसलिए भक्ति की तुलना लता से की गई। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं कि ये जो हमारी भक्ति लता है, इसका सिंचन करना है श्रवण और कीर्तन से। पानी किसका डालना है? श्रवण और कीर्तन का पानी। और इसका जो बीज है, ये बीज है श्रद्धा का। तो श्रद्धा का बीज भक्ति की लता और सिंचन श्रवण और कीर्तन, और उसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद ने ऐड किया कि जो अवांछित पौधे हैं अगल बगल जो उगेंगे उनको उखाड़ते रहना। ये अवांछित वीड्स जिसे बोलते हैं, वीड्स को निकालते रहना, अप्रूटिंग द वीड्स। ये सारे हमारे अनर्थ जो साथ साथ ये भी भक्ति लता के जैसे ही दिखते हैं दिखने में, लेकिन ये अवांछित है। तो इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि की तुलना वृक्ष से लेते हुए अब रूप गोस्वामी लता से कर रहे हैं। अब आगे भगवान कहते हैं, एकेह कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, ये व्यवसायात्मिका बुद्धि, फिर भगवान एक और एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, एकेह। तो एक और इह से बना है एकेह, एक समान रहने वाली, और इह का अर्थ है इस संसार में। तो भगवान व्यवसायात्मिका बुद्धि के बाद एकेह ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि मानो अर्जुन पूछ लें कि ये जो व्यवसायात्मिका बुद्धि आप बता रहे हो, दृढ़ संकल्प, ये तो शायद आपके संसार गोलोक वृंदावन में संभव है ना? लेकिन यहां इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार को भगवान ने क्या कहा है? अशाश्वतम। अशाश्वतम का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ होते हैं अशाश्वतम के। अशाश्वत का एक अर्थ है टेम्पररी, और अशाश्वत का एक और अर्थ है एवर चेंजिंग। हर समय ये बोलते हैं ना, बदलती दुनिया, लोग यहां बदलते, दुनिया यहां बदलती रहती। तो यहां पर हम देखें, इस भौतिक संसार में आप किसी एक जगह पर जाओ और किसी एक व्यक्ति से मिलो, कुछ समय बाद वो जगह बदली सी लगती है, व्यक्ति समझ में नहीं आता है कि ये वही था इतने समय पहले जो मैंने जिससे मिला था। तो लोगों का शारीरिक रूप, मानसिक व्यवहार, हर समय उसके अंदर बदलाव होता रहता है। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए आपका मित्र बना हुआ है, और वही व्यक्ति जो आपका इतना घनिष्ठ मित्र था, कुछ समय बाद अब उसके अंदर बदलाव दिखता है और आपके अंदर बदलाव आ जाता है उसकी वजह से। तो श्रद्धा, अब यदि हम पूछें कि श्रद्धा के अंदर इस संसार में कितने बदलाव आते हैं, बचपन में हमें श्रद्धा किस में थी? माता पिता में। छोटा सा बालक वो मां पर इतना श्रद्धा रखता है कि हाँ, मैं यदि किसी भी समस्या में रहूं, ये जो स्त्री है ये हर समय मेरा भरण पोषण करती रहती, कुछ भी मुझे चाहिए, भूख लगी है, कुछ तकलीफ हो रही है, इसकी ओर मैं देखूंगा, तो श्रद्धा रहती है। फिर धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है तो उसे श्रद्धा अपने ऊपर होने लगती है कि मुझे जब भूख लगेगी तो मैं अपने आप किचन में जाके, अभी मां को बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप मैं किचन। फिर उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है उसकी काबिलियत के ऊपर कि मैं खुद किचन बनाऊंगा, खुद घर बनाऊंगा, सब कुछ खुद करूंगा। फिर बाद में वृद्ध अवस्था में जब कुछ नहीं कर पाता तो वापस श्रद्धा उसके ऊपर हो, होता है ना, वॉकर या व्हीलचेयर या हॉस्पिटल नर्स, इनके ऊपर फिर वापस से श्रद्धा। तो ये श्रद्धा हमारी, ये संसार हमेशा हमारी श्रद्धा को बदलने में लगा हुआ है कि इस पर श्रद्धा भी करो फिर छोड़ो, और इस पर करो उसको छोड़ो, इस पर करो, ऐसे कर कर पूरा जीवन हमारा केवल यहां से वहां, वहां से यहां हमारी श्रद्धा के बदलाव में बीतता रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में यदि तुम अपनी श्रद्धा लगाओगे तो भगवान कहते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। क्यों? कोई प्रश्न पूछे क्यों? आज मैं भारत में पैदा हुआ इसलिए भारत माता की जय, कल मैं और कहीं पैदा हुआ तो फिर वो माता की जय हो जाएगी। तो ये श्रद्धाओं में जो बदलाव आ रहा है, कैसे भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में बदलाव नहीं आएगा? कैसे ठोक पीट कर भगवान कह सकते हैं या एक भक्त कह सकता है कि एकेह, इस संसार में रहते हुए भी ये दृढ़ संकल्प या दृढ़ श्रद्धा में बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा? कैसे बोल सकते हैं जब देखा जाता है कि जीते जी कितनी श्रद्धाओं में बदलाव आता है हमारे? जीव का स्वरूप है नित्य दास, ठीक है, ये कारण है जीव का स्वरूप, और क्या कारण हो सकता है? मृत्यु के बाद भी हमारी भक्ति कंटिन्यू रहती है। अच्छा, भगवान उसका मरने नहीं देते उस श्रद्धा को, ये बोल रहे हैं। देखिए, हाँ, आप लोग सब बहुत अच्छे सुझाव दे रहे हैं। यहां पर हमको ऑब्जेक्ट को पहले देखना है, ऑब्जेक्ट कौन है, श्रद्धा का ऑब्जेक्ट कौन है? कृष्ण ना, उनमें बदलाव नहीं। इस भौतिक संसार के जितने हम श्रद्धा डालें ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहते। बदलाव तो छोड़ दो कि मैंने अभी मेरी भक्ति दिखाई एक व्यक्ति के प्रति, कुछ समय बाद वो मेरी भक्ति छोड़ दो, व्यक्ति नहीं है। तो काल का जो प्रभाव इस भौतिक संसार में, वो दो चीजें करता है। काल का प्रभाव दो चीजें करता है, एक तो आप यदि किसी में श्रद्धा रखे हो तो काल का प्रभाव उस ऑब्जेक्ट को ले जाएगा, काल के प्रभाव में जिसके ऊपर आप श्रद्धा रखे वो चला जाएगा, है ना। अभी कितने गांधीवादी थे उस समय के, गांधी जी ने रहे, तो आपके श्रद्धा के ऑब्जेक्ट चले जाएंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट श्रद्धा के वहां रहे आप चले जाओगे। इधर होम यू पुट फेथ इन दैट ऑब्जेक्ट विल बी टेकन अवे बाय टाइम, or else you will be taken away by time, the object will remain, you will be taken away. लेकिन एक भक्त और कृष्ण का जो संबंध है उसमें, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा, चाहे आप स्वल्प मात्रा में भी ये भक्ति करो, मर भी जाओ हजार बार, लेकिन फिर भी वो जो भक्ति की है भगवान कृष्ण के प्रति वो एज इट इज रहती है, उसको काल का प्रभाव मार नहीं सकता उस भक्ति को, और भगवान को तो कौन मार सकता है। तो जो प्रोसेस है और जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों शाश्वत हैं। तो क्योंकि ये दोनों शाश्वत हैं इसलिए इस भौतिक संसार में जो सब कुछ अशाश्वत है और दुखालय है, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी यदि कोई अपनी श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति दिखाता है तो वो एकेह रहेगी। यहां पर भगवान व्यवसायात्मिका बुद्धि के बाद ये एक ही शब्द जो इस्तेमाल किए हैं इसका यार समझ में आया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो शाश्वत हैं, ऑब्जेक्ट इज स्टेडी इटर्नल, दैट इज द रीजन। तो अब भगवान ने अर्जुन को कुरु नंदन नाम से संबोधित किया, कुरु वंश के अर्जुन। तो ये बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए महाराज कुरु, और ये पूर्वज अर्जुन के रहे, और बहुत प्रसिद्ध थे महाराज कुरु अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि के लिए। तो इसलिए भगवान अर्जुन को और कोई शब्द इस श्लोक में इस्तेमाल नहीं किए कि तुम तो जानते हो तुम्हारे पूर्वज महाराज कुरु वो कैसी भक्ति किए थे, एक भक्ति मेरे प्रति, तो कम से कम उनका तो नाम रखो, बोलते हैं ना अपने खानदान का तो नाम बना के रखो। इसलिए एक कुरु नंदना, कुरु नंदन शब्द से संबोधित भगवान ने किया। अब आगे भगवान कहते हैं बहु शाखा यनांतश्च, कि इसके विपरीत इस भौतिक संसार में जब किसी की श्रद्धा बहुत सी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, बहु शाखा, तो भगवान ये कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में बुद्धि की दो विचलित अवस्थाएं होती हैं। हम भी ये बहुत अच्छी से अनुभव किए हैं हमारी भक्ति में भी, ये दो विचलित अवस्थाएं, कठिनाइयां उस समय विचलित हो जाती है हमारी बुद्धि, और जब कोई प्रलोभन उस समय हमारी भक्ति विचलित हो जाती है। देखा माला कर रहे हैं, जब सब कुछ कोई कठिनाई नहीं कोई प्रलोभन नहीं तो 16 माला ठीक से चलते रहता है ना, जैसे ही कोई कठिनाई आई माला साइड में रखे भाड़ में गए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सारा बिजनेस ठप हो गया, बीमारी इतनी आ रही है। तो जैसी कठिनाई आती है सबसे पहले अटैक हम करते हैं हमारी साधना के ऊपर, वो कठिनाई का सबसे पहला प्रहार हमारी साधना के ऊपर होता है। साधना का अर्थ है विश्वास, वही दृढ़ संकल्प के ऊपर वो डगमगाना शुरू करता है हमारा दृढ़ संकल्प। और प्रलोभन, कोई प्रलोभन हमें हमारी साधना के बीच में कुछ दे देता है, और वो भी माया देवी प्रेजेंट करती प्रलोभन, तो उस समय भी हमारी साधना और हमारी श्रद्धा डगमगाना शुरू करती है। ऐसे बहुत से हमने व्यक्ति देखे हैं कि जो शुरू किए भगवान कृष्ण की भक्ति और फिर बीच में कोई और अन्य सूत्रों में उन्हें कुछ भौतिक उपलब्धियां मिलने लगी, तो जब वहां पर उनको भौतिक उपलब्धियां मिलने लगी तो उन्हें लगा कि अरे वो ज्यादा इफेक्टिव है, ये मैं इतना घुमाया इतने टाइम से माला घुमाया, कुछ खास तो मिला है नहीं इसमें, देखो एक महीने में जाने से ही मुझे लाइट दिखाई दे रही है, और जो भी मेरी दमे की बीमारी ठीक हो गई, अभी जो भी वड़ा पाव अच्छे से पच जाता है, हर समय इस्कॉन में मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता था, खाना अच्छा मिलता है लेकिन बाद में गड़बड़ होता है ना, तो ये सब जो तथाकथित उपलब्धियां हैं उसके वजह से इसको कहते हैं प्रलोभन। और बहुत बार भक्ति करने के वजह से आपको भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होंगी, और ये सारी भौतिक उपलब्धियां ये एक परीक्षा है। भगवान श्री कृष्ण ये दोनों भेजते हैं, जैसे हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे वो ड्रामा का एग्जाम्पल, एक मार खा रहा है और एक मार रहा है। बेचारा जो मार खा रहा है कठिनाई में, और जो मार रहा है उसको प्रलोभन है, पहली बार मिला है हाथ साफ करने के लिए, तो उसको प्रलोभन है, और दोनों एक्सट्रीम है। लेकिन हमारी श्रद्धा टेस्ट होती है ये दोनों समय, कि दोनों समय हम भगवान श्री कृष्ण पर कितनी, उसको अंग्रेजी में शब्द है लॉयल, हाउ लॉयल वी आर इन इन लाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड इन लाइट ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटाइसमेंट्स, प्रलोभन। और ये दोनों स्थितियों में श्रील हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल, दोनों स्थितियों में हमारे नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और उस समय के जो यवन राजा, वो यवन राजा ने देखा कि ये हमारे कौम में पैदा हुआ ये हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर भी यवन कौम में पैदा हुआ, हमारे कौम में पैदा हुआ, और ये हिंदुओं का नाम लेता है भगवान के। तो 22 बाजारों में उनको वो कोड़ों से मारा गया, कोड़ों से मारा गया, और ये आदेश दिया गया कि इतना मारो, और अपराध क्या था, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे थे, इतना मारो कि ये इसके प्राण छूट जाए। तो ये यमन मार रहे हैं हरिदास ठाकुर। अब देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, कोई हमें 22 बाजारों में मार रहे हैं हरि नाम लेने की वजह से, लेकिन थोड़ा सा कुछ बुखार आ गया, सरदर्द हो गया, तुरंत हम छोड़ देते हैं। यहां पर हरिदास ठाकुर का उदाहरण है कि उन्हें 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया, और वो कहते हैं कि आप चाहे मेरे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, और वो मारते हुए बोल रहे हैं कि हम मारना बंद कर देंगे यदि हरिदास तुम ये भगवान का नाम लेना बंद कर दो। तो हरिदास कहते हैं मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दो तुम, और वो कहते हैं एक एक टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये उनका दृढ़ विश्वास, ये उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण, नाम कीर्तन कदापि नहीं छोड़ूंगा, आप मार डालो, टुकड़े कर दो, एक एक टुकड़ा भगवान का नाम लेगा। तो कठिनाई में श्री हरिदास ठाकुर ने अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि बनाए रखी, और प्रलोभन उस वैश्या को भेजा था रामचंद्र खान ने, और वो वैश्या प्रलोभित करने के लिए हरिदास ठाकुर के पास आए, और साक्षात माया देवी का रूप उस वैश्या के रूप में हरिदास ठाकुर के सामने, और हरिदास ठाकुर उनका दृढ़ विश्वास वैसे का वैसा बना रहा, इतना कि उनके दृढ़ विश्वास के वजह से वो एक वैष्णवी बन गई, वो वैश्य। तो ये एक उदाहरण है जिसमें ये जो बहुशाखा हमारे अंदर हम अनुभव करते हैं ना, मेनी ब्रांच, तो यहां तो दो ही ब्रांच निकाले हमने बाहर, कठिनाई और प्रलोभन, और उसके बहुत से शाखाएं, दे हैव ओपन मेनी ब्रांचेस बोलते ना, कठिनाइयों ने और प्रलोभनों ने बहुत से शाखाएं खोल रखी। तो भगवान उसके विषय में कहे कि वो जो बहुशाखा और अनंत, यहां पर बहु का अर्थ होता है मेनी, संस्कृत में बहु का अर्थ है मेनी, बहुवचन जैसे कहते हैं, तो बहुशाखा, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये बहुशाखा अनंत, मैनी केवल इतना नहीं कि हाँ होगा कुछ एक हाथ ज्यादा होगा, नहीं, अनंत बहुशाखा ही अनंतश्च, अनंत शाखाएं बनती जाती बनती जाती बनती जाती, और ये शाखाएं जो मूल बुद्धि का दृढ़ संकल्प है उससे भ्रमित करने के लिए होती। तो अब भगवान आगे कह रहे हैं कि बुद्धयो अव्यवसायिनाम, तो अब यदि हम व्यवसाय और अव्यवसाय का एक और अर्थ देखें, तो व्यवसाय का एक और अर्थ क्या होता है? व्यापार। और इसका विपरीत भगवान कह रहे हैं अव्यवसायिनाम अर्थात अव्यापार। तो इसे कैसे समझे कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यापार में लगता है तो उसे फोकस्ड होना है उस व्यापार में। उस व्यापार में जब वो फोकस्ड रहता है अर्थात वो अपना तन मन धन सब कुछ उसमें लगाता है, तब जाकर उसे मुनाफा मिलता है उस व्यापार में। तो हमारे आचार्य ने ये व्यवसाय का उदाहरण लेते हुए एक कृष्ण भक्त केवल भक्ति के विषय में बोलता नहीं रहता, केवल वो करता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यापारी है, बोले कि हाँ मुझे इतना बड़ा व्यापार शुरू करना है, 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, इतने अलग अलग मेरे रिटेल शॉप्स होने चाहिए, बोल रहा है। पूछे तो आप कर क्या रहे हो? नहीं नहीं होंगे ये सब हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? कुछ दिखाओ, करके दिखाओ, केवल बोल के नहीं। तो ये जो व्यापारी जो होता है उसका अर्थ क्या है? बिजनेसमैन ना। बिजनेसमैन को ये जो वर्ड मिला है ये कहां से मिला है? वन हु इज बिजी इन सम बिजनेस, बिजनेसमैन, बिजी है वो। बिजी का अर्थ क्या होता है? कार्य, कुछ किसी चीज में वो कार्यरत है। इसलिए यहां पर व्यवसाय का अर्थ ये हुआ कि भक्ति केवल एक सेंटिमेंट नहीं। डू व्हेन योर सेंटिमेंट इज शोन, शो दैट सेंटिमेंट। इसलिए जो बहुशाखा होते हैं वो अव्यवसायी नाम, वो खाली बोलते हैं। जैसे एक बार एक आया श्रील प्रभुपाद के पास और बोलने लगा कि ये बाबा के बारे में आपने सुना है क्या, ये स्वामी के बारे में आपने सुना है, ये पंथ के बारे में आपने सुना है। प्रभुपाद ने कहा आप किसको फॉलो करते हो? मैं बता रहा हूं आपको। प्रभुपाद, यू फॉलो समवन, डोंट जस्ट टॉक कि ये वो, ये ऐसा, ये वैसा। तुम एक को फॉलो करो, उसका रिजल्ट दिखाओ, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो ये बहुशाखा होते हैं कि बस यहां पर भी गए वहां पर भी गए, सबका सैंपल वैंपल लेके होते ना, कई होते हैं होटलों में जाके खाली सैंपल खा के आ जाते हैं। कई ऐसी दुकानें होती है, वो लोग बेचारे दे देते हैं सैंपल चखने के लिए। तो कई होते हैं उनके पास पैसे वैसे कुछ होते नहीं, बस वो जाके वो सैंपल से ही पेट भरते रहते हैं अपना। और हजार दुकानों में जाके सैंपल खाते तो फिर अंदर पेट गड़बड़ होता है। तो वैसे ही जो बहुशाखा होते हैं वो हर समय दस्त लगे रहते हैं उनको। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति के विषय में केवल एक भावना मत रखो, व्यवसाय में लगो। डू समथिंग फॉर द बिलवड, विच मीन्स डू समथिंग फॉर कृष्णा, ये वो बता रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे भगवद गीता कैसे फैल गई इसकी। ये एक था शिष्य एक गुरुजी का, गुरुजी ने इसको कहा था कि मैं जा रहा हूं प्रचार के लिए, तुम कुटिया में बैठो और तुम भगवद गीता का रोज पाठ कर। तो ये भगवद गीता का रोज पाठ किया करता था, और एक दिन इसने देखा भगवत गीता खोली तो भगवत गीता के कुछ पन्ने किसी ने कुतर दिए थे। किसने कुतर दिए थे? चूहे ने। तो इसे समझ में आ गया कि भगवत गीता मुझे गुरुजी ने कहा है पढ़ने के, तो चूहा भगवत गीता के पन्ने को कुतर रहा है। तो चूहे को कंट्रोल में लाने के लिए बिल्ली को ले गया ढूंढ ढांड के। अब देखो बिल्ली को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो गुरुजी ने कहा था भगवत गीता पढ़ने के लिए, तो भगवत गीता को छोड़ के वो गया बिल्ली को ढूंढने के लिए। फिर हम जानते हैं कथा में आगे कि बिल्ली को अब दूध चाहिए, तो रोज कहां से भीख मांग के दूध लाए, तो सोचा है कि गाय रख लेते हैं, तो अनलिमिटेड सप्लाई है इसका आता रहेगा, तो दूध गाय जो देगी बिल्ली को मैं पिलाऊंगा, बिल्ली चूहे को दूर रखेगी, मैं अपना भगवत गीता पढ़ूंगा। ये देखो शाखाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बहु शाखा अनंत। फिर उस गाय को देखभाल करने के लिए, अब गाय की देखभाल कौन करे, तो गाय की देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो उसने शादी कर ली। उसने कहा शादी कर ली, गाय की देखभाल होगी, मेरी भी देखभाल हो जाएगी, बिल्ली की देखभाल हो जाएगी, चूहे की देखभाल हो जाएगी, और अपना भगवत गीता। तो कई बार हम भी सुनते हैं भगवत गीता का ऐसा अध्ययन करना चाहिए, ऐसा श्रवण करना चाहिए, हाँ भगवत गीता, और हमारा वो जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट ही हमारा पूरा जीवन ले लेता है, कि फिर भगवत गीता एज इट इज पढ़ी रहती है, कभी खोली नहीं फिर उसको। तो ये गुरुजी जब आए, गुरुजी ने देखा तो वो तो बाहर गाय है, वो गाय के बछड़े भी हो गए अभी, और फिर एक उसकी पत्नी है उसके बच्चे, और वो कुटिया फिर इतनी फैल गई। तो आके पूछा, अरे मैंने तो भगवत गीता अध्ययन करने के लिए छोड़ के गया था तेरे को। तो वो कहता है गुरुजी भगवत गीता फैल गई। अब देखिए भगवत गीता फैल गई, खुद फैल गया लेकिन कहता है भगवत गीता फैल गई। तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं कि बहुशाखा, कि अध्यात्म का पालन करने के लिए वो व्यक्ति जाता है, लेकिन फिर वो उसकी शाखाएं फैलते 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 वो भगवत गीता तो रह जाती है, अध्यात्म रह जाता है, और वो केवल उन शाखाओं में ही बंदरों की तरह कूदता फिरता है, यहां से वहां, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा से इस शाखा। इसलिए शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर वो अपनी टीका में वो कहे कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक का मूल क्या है? जैसे कि शरीर का मूल आत्मा, बुद्धि का मूल दृढ़ संकल्प, आज के श्लोक में हमने सुना, इस श्लोक का मूल विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं गुरु भक्ति। व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ है कि गुरु, अपने गुरु के आदेशों का पालन करना। तो जब श्रील प्रभुपाद ने ये श्लोक और विश्वनाथ चक्र ठाकुर की टीका इस श्लोक के ऊपर पढ़ी, तब श्रील प्रभुपाद को वो जो उनको आदेश मिला था, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने उनके प्रथम मीटिंग में जो आदेश दिया था, तो ये श्लोक पढ़ने के बाद और इनकी टीका पढ़ने के बाद उनके मन में ये दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ। Implicit faith in the words of one spiritual master. इसलिए कहा गया है श्रद्धा शब्दे, कि श्रद्धा हमें किस में होनी चाहिए? शब्दों में, गुरु के शब्दों में वो श्रद्धा होनी चाहिए। सुदृढ़ विश्वास, देखिए इस श्लोक में श्रद्धा विश्वास सुदृढ़ कितने एडजेक्टिव्स यूज किए, किस में? शब्द में। तो श्रील प्रभुपाद, उन्होंने बहुत वर्षों, 33 वर्ष लगे उन्हें इस, वो जो आदेश उन्होंने सुना था उस आदेश को अपने कार्य में लाने के लिए। और ये श्लोक था व्यवसायत्मिक बुद्धि और श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर की जो टीका, जिसके वजह से श्रील प्रभुपाद को दृढ़ विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज ने ये आदेश दिया है अर्थात ये पूरा होके ही रहेगा। ये दृढ़ विश्वास उनको था, इसलिए श्रील प्रभुपाद इस दृढ़ विश्वास को लेकर जब पाश्चात्य देश गए और कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे कि ये विदेशी श्रील प्रभुपाद की वाणी को समझ भी पाएंगे, अपनाना तो दूर की बात कि ये समझ भी पाएंगे और अपना जीवन इस प्रकार से परिवर्तित कर संपूर्ण तरीके से श्रील प्रभुपाद को शरणागत होंगे। तो श्रील प्रभुपाद का ये एक चित्र है, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद अकेले जब कीर्तन किया करते थे और आसपास सारे वो अमरीकी और हिप्पी वो मंडराते, वो कुछ नहीं जानते कि ये क्या है महामंत्र, इसकी महिमा क्या है, ये युग धर्म है, चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हमें ला कर दिए और श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त आचार्य आए हमें देने के लिए, कुछ नहीं जानते थे। बस वो आके बैठते थे, अच्छा लगता था कि कुछ अलग से कुछ गा रहे हैं, दिखने में अलग है, गाने में कुछ अलग है, तो उनको ये सब अलग अलग चीजें अच्छी लगती थी। और श्रील प्रभुपाद इतने अथक प्रयास शुरुआत में उन्होंने किए और अंत में एक घटना ऐसी है कि श्रील प्रभुपाद टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में बैठे और उन्होंने आंखें बंद की, जैसे यहां पर आंखें बंद है इनकी, आंखें बंद की और 3 घंटा प्रभुपाद कीर्तन किए नॉन स्टॉप, आंखें बंद 3 घंटा अकेले, कोई है ना पूरा हमारा जो कीर्तन पार्टी ऐसा कोई कीर्तन पार्टी नहीं था, अकेले। और श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कि मैं जब आंखें खोलूं तो आप मुझे संकेत देना कि आप मुझसे क्या चाहते हो। और 3 घंटे बाद कीर्तन करने के श्रील प्रभुपाद ने जब आंखें खोली तो श्रील प्रभुपाद ने देखा जितने सारे वो अमरीकी हिप्पी खड़े थे वो सब हाथों में हाथ लेकर प्रभुपाद की प्रदक्षिणा करते हुए कीर्तन कर रहे थे। तो ये संकेत प्रभुपाद को मिला दैट दिस हरे कृष्ण महामंत्र विल वर्क हियर इन अमेरिका। और ये उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि का नतीजा था। इसलिए अभी जैसे हमारा तो यहां पर इतना सुंदर मंदिर है और इतने सुंदर अर्च विग्रह, प्रभुपाद की शुरुआत इस्कॉन की कैसे हुई? प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को, पहले तो न्यूयॉर्क में कोई मंदिर वगैरह कोई आसार नहीं था, तो पहला जो मंदिर बनने के आसार सैन फ्रांसिस्को में हुए और उन्हें जो जगह मिली मंदिर की, देखिए प्रभुपाद का दृढ़ विश्वास कितना था कि उन्हें जो जगह मिली सबसे पहला सैन फ्रांसिस्को का मंदिर बनने के लिए जो जगह मिली, आप जानते हो क्या जगह थी? ऐसा नहीं था कि जैसे हम लोग यहां पे इतना सुंदर डोम के साथ मंदिर बनाए भगवान के लिए ध्यान में रखते हुए, प्रभुपाद को तो जो 4 दीवारी मिलती उसमें मंदिर शुरू करना था, फैसिलिटी मिलती तो जो सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली फैसिलिटी मिली वो मॉर्चुरी था, मॉर्चुरी मॉर्ग जिसे बोलते, जो मृत शरीर वहां पर रखे जाते थे और वो किसी ने दे दिए कि ठीक है आपको अगर यूज करना है तो आप इसको यूज करो। तो अभी देखिए हम लोग यहां पे भगवान की प्रतिष्ठापना की है, सब विधियां आपने देखी थी, तो वहां पर जो यहां पर मृत शरीरों को काटा जाता था पोस्टमार्टम वगैरह के लिए, तो वो जगह डीटी किचन बना आगे चलकर, भगवान का डीटी किचन बना वो, और जहां पर वो मृत शरीरों को डिस्प्ले किया जाता था क्योंकि वो आके परिवार वाले देखते उधर सब वो मृत शरीरों को मेकअप किया जाता है, पाश्चात्य देश में, तो जो उनके रिलेटिव हैं, सगे संबंधी, वो लोग आते हैं, सजा हुआ मृत शरीर को देखते हैं, कोई दुख नहीं होना चाहिए, रोना वोना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए, स्मशान वैराग्य भी नहीं आना चाहिए। तो जहां पर वो मृत शरीर को डिस्प्ले किया जाता था परिवारों के लिए, आकर वो देखें, वो बना भगवान का ऑल्टर। फ्यूनरल ऑल्टर बिकेम द लॉर्ड्स ऑल्टर लेटर ऑन। तो केवल प्रभुपाद के दृढ़ संकल्प से ही एक मॉर्ग गोलोक वृंदावन में परिणित हो सकता था। तो वो जो भक्त को प्रभुपाद ने कहा कि हमें पहले वो जब जगह मिली तो प्रभुपाद ने कहा कि हमें इसको शुद्ध करना है। बोले शुद्ध, ये शुद्ध कैसे करेंगे इसको? तो बोले पानी मारे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, काउडंग, काउडंग लेके आओ। तो उनको ना काउडंग, काउडंग से शुद्ध होगा? मतलब उनको तो ये लग रहा था कि ये किसी जानवर का मल है। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ढूंढ, उस समय तो कोई फार्म वगैरह थी नहीं, कोई गाय भी इस्कॉन की नहीं थी। तो बाहर के फार्म में गए, बाहर के फार्म में जाके उनको कहते हैं कि हमें गोबर चाहिए। उनको भी शर्म आ रही थी क्योंकि गोबर मांगने में। तो लोग फार्म वाले पूछते थे, क्या हमारे पास लोग आते हैं गाय मांगने के लिए, गाय का दूध मांगने के लिए, उसका मक्खन मांगने के लिए, तुम गोबर क्या करोगे? उन्होंने, हमको शुद्ध करना है। तो ये उनके संस्कार थे, कुछ पता ही नहीं था उनको। तो इस प्रकार से वो गोबर से वो सब जगह शुद्ध की गई। भगवान की प्रतिष्ठापना ऐसे ऐसे जगहों पर श्रील प्रभुपाद ने की। एक जगह प्रभुपाद को मिली अमेरिका में, लॉन्ड्रोमैट जिसको बोलते हैं, वहां पर वो ये हमारे धोबी तालाब जिसको बोलेंगे, वो धोबी घाट, तो वो जगह मिली। तो उसको प्रभुपाद ने मंदिर में परिणित किया। मॉन्ट्रियल में एक जगह मिली, उसे उसे कहते बाउलिंग एली। वो एक ऐसे स्टेडियम जैसा था जहां पर वो गेंद फेंक फेंक के वो खेला करते थे। बाउलिंग एक गेम होता है, तो वो गेम खेला करते थे। तो वो जगह मिली और उस जगह में कोई आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ऐसा रेगुलेशन था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे इससे बड़ा ऐसा हॉल था और उसमें उन्होंने पर्दे लगाए थे क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो पर्दा लगा, एक पर्दा बना भगवान का किचन, दूसरा पर्दा बना ब्रह्मचर्य आश्रम, एक पर्दा बना माताजी आश्रम और एक पर्दे में भगवान एक चार दीवारी के अंदर। तो ऐसे ऐसे जगहों पर प्रभुपाद, एक जगह अमेरिका में प्रभुपाद को मिली भूतों से वो घिरी हुई फार्म हाउस, हो हाउंटेड बाय घोस्ट। तो भूतों के बीच में प्रभुपाद वहां पर कीर्तन करा करा के भगवान को प्रतिष्ठित किए। तो सोचिए, हमको लग रहा होता कि कितना मुश्किल है भगवान को प्रतिष्ठा करना, यहाँ पे कितनी सारी विधियां करनी। सोचो प्रभुपाद उस समय कितने सारे हमारे कलश और ये सब हमको यहाँ पर मिल गए। प्रभुपाद जब प्राण प्रतिष्ठा किए ऐसी ऐसी मूर्तियों की, तो जगह कैसी थी, कौन से उनको पैराफर्नेलिया मिला होगा अमेरिका में अभिषेक वगैरह ये सब करने के लिए। लेकिन क्यों भगवान ऐसे भी स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए, अवतरित हुए? क्योंकि व्यवसायात्मिका बुद्धि। श्रील प्रभुपाद जो इस श्लोक को लेकर और विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर की जो टीका इस श्लोक के ऊपर, इम्प्लिसिट फेथ इन द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो आज हम देखते हैं, हम लोग सब यहां पर श्री श्री राधा मदन गोपाल जी को इतने सुंदर तरीके से प्रतिष्ठित कर पाए श्रील प्रभुपाद। इसलिए जब ये हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला था, तब सर्वप्रथम हम श्रील प्रभुपाद को प्रतिष्ठित किए कि यदि वो नहीं तो भगवान नहीं आ सकते। इसलिए पूरे इस्कॉन में जनानी मासप्रभु बता रहे थे कि वो श्री संप्रदाय मध्व संप्रदाय के कुछ पुजारियों से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि विष्णु का जो मंदिर होते हैं, जितने भी विष्णु के मंदिर देखोगे, विष्णु के अर्च विग्रह के सामने गरुड़ स्तंभ होता है, गरुड़ जी होते हैं, लेकिन आपके इस्कॉन के मंदिरों में गरुड़ जी नहीं, गरुड़ जी के बदले आपके प्रभुपाद बैठे रहते हैं। तो ये श्री संप्रदाय और मध्व संप्रदाय के पुजारी, इन्होंने कहा इनसे कि आपके इस्कॉन के गरुड़ जी आपके प्रभुपाद है, और जैसे कि गरुड़ जी वो वाहन है भगवान के, वैसे ही श्रील प्रभुपाद ये वाहन है भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण भक्ति को न केवल हम तक बल्कि देश विदेश तक पहुंचाने के। इसलिए ये जो श्लोक हमें कितने अलग अलग पहलुओं से समझना है, हमारे व्यक्तिगत रूप से, और जो हम इस्कॉन संस्था में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इसकी नींव बुनियाद श्रील प्रभुपाद ने जो डाली वो इस श्लोक के आधार पर। तो इसलिए हम आज का जो श्लोक है वो हमारे जीवन में उतारें, यही प्रार्थना हम भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी से करें और श्रील प्रभुपाद से करें, कि जैसे श्रील प्रभुपाद ने व्यवसायात्मिका बुद्धि इस श्लोक को लेते हुए पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, सर्वप्रथम हम अपने जीवन में ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पूर्ण रूपेण उतारें और हम दूसरों को बांटते रहें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।